मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 7 मार्च 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 22 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने इस बीच एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं फ्रेंड्स समीर पंवर, जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, राम सिंह सोढ़ा, आप बाड़मेर राजस्थान से हैं, अनीश रंजन सरकार, आप मलकानगिरी ओडिशा से हैं, राहुल कुमार मेरठ उत्तर प्रदेश से, अजीत कुमार बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद इरफान रामपुर दड़ियाल उत्तर प्रदेश से, अभिषेक कुमार गुप्ता सतना मध्य प्रदेश से, मुकेश अजपाल जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, चंद्रशेखर यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, शिवानी ठाकुर लुधियाना पंजाब से, अर्जुन सिंह उइके मंडला मध्य प्रदेश से, मनीष कुमार रजक भागलपुर बिहार से, नागेंद्र कुमार सिंह देहरादून उत्तराखंड से, रमन कुमार फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, प्रवीण कुमार शर्मा रामगढ़ बिहार से, चंदन कुमार जमुई बिहार से, परमेश्वर साहनी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, शुभम कुमार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, महेश भट्ट श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से, अखलाक आलम पटना बिहार से, नेहा बोरकर बड़ा सिवनी मध्य प्रदेश से और प्रेम कुमार पाल अमेठी उत्तर प्रदेश से। आप सभी का मैं एकेडमी की बहुत पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, अब मैं शॉर्ट में एक बार फिर से अपने सभी मित्रों का नाम दोहरा रहा हूं। समीर, राम सिंह, अनिश रंजन, राहुल, अजित, मोहम्मद, अभिषेक, मुकेश, चंद्रशेखर, शिवानी, अर्जुन, मनीष, नागेंद्र, रमन, प्रवीण, चंदन, परमेश्वर, शुभम, महेश, अखलाक, नेहा और प्रेम कुमार। मित्रों, आप सब सोच रहे होंगे कि अभी तो क्लासेस लगने में बहुत वक्त बाकी है, लगभग 8 महीने, लेकिन ये मानकर चलिए कि इन 8 महीनों के वक्त को गुजरने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, मैं अपने सभी रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स से ये अर्ज करना चाहूंगा, जैसा कि मैं बीच बीच में करता भी रहता हूं, कि दोस्तों यहां आने के बाद जरूर आपको ये बताया जाएगा, यही बताया जाएगा कि सिविल सर्विस की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। लेकिन प्लीज आप केवल यहीं आने की प्रतीक्षा न करें। एक रिक्वेस्ट मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट से करता हूं और वो ये कि डेली ऑडियो लेक्चर लाइफ मैनेजमेंट सहित आपको सुनना चाहिए और इसे एक तरीके से आप अपने जीवन की चर्या का हिस्सा बना लें। यदि किसी वजह से, किसी बहुत जरूरी काम की वजह से उस दिन न सुन पा रहे हों तो उस अगले दिन जरूर सुने। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास भी इतना जरूरी काम नहीं हो सकता कि जिसने सिविल सर्वेंट बनने की ठानी हो उसके लिए जो जरूरी हो वह काम उसके लिए जरूरी न रह जाए। तो प्लीज इसे आप अपनी आदत में शुमार कर लें। तो दोस्तों, बहुत लंबे गैप के बाद, लगभग 20 दिनों के अंतराल के बाद, आज मैं अब यूं कह लीजिए कि करंट अफेयर्स को लेकर के आपके सामने सीधे सीधे हाजिर हूं और आपसे सीधे मुखातिब हो रहा हूं। अभी तक जो आपने डेली ऑडियो लेक्चर में सुना है, डेफिनेटली जैसा कि मैंने बताया था कि वो सबके सब प्री रिकॉर्डेड थे, लेकिन उनमें मैंने जो विषय चुने थे मित्रों, किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इस बीच आप लगातार सुनते रहे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लगातार मेल के द्वारा भी मुझे अपने विचारों से अवगत कराते रहे हैं और आप लोगों में से कई स्टूडेंट के मेल ऐसे मुझे मिले जिसमें उन्होंने सीधे सीधे जो विषय लिए गए उनकी प्रशंसा की। तो दोस्तों, ये आप लोगों का स्नेह है कि बहुत करंट पर बात नहीं हो रही है, इसके बावजूद आप लोगों ने अपना जुड़ाव डेली ऑडियो लेक्चर के प्रति बनाए रखा। और इसमें कम से कम मुझे तो कोई संदेह नहीं है फ्रेंड्स कि अगर इस तरह की प्रतिबद्धता आपकी रही, केवल डेली ऑडियो लेक्चर की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपने उद्देश्य के प्रति यदि आपकी प्रतिबद्धता रही तो मान करके चलिए कि मंजिल को पा लेना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम कल के न्यूज और आज के न्यूज़पेपर्स के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज में कुछ खास ऐसी बात नहीं थी जिसको लेकर के हम एक लंबी बातचीत कर सकें। इशारे के तौर पर कुछ न्यूज की मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर मुझे थोड़ी सी लगी जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू सर, वो भी खासकर प्री को लेकर, और सच पूछे तो वो भी सिविल सर्विस से कम, जो स्टेट सिविल सर्विस या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके दृष्टि से ज्यादा, और वो थे आईएनएस विराट को लेकर। ये नेवी का हमारा एक बहुत विशाल जहाज था जो सेवा के बाद अब उसको विदाई दे दी गई है, कह लीजिए उसकी फेयरवेल हो गई है। बहुत इस तरह के फेयरवेल आप देखेंगे मित्रों, तो बहुत ही भावुक फेयरवेल होते हैं, मतलब मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सोचिए कि एक लोहे का ढांचा है विराट, मतलब एक इस जहाज ही है कह लीजिए, और लोहे का एक ढांचा है, उसमें एक मशीन है वो भी लोहे की बनी हुई है, और उसमें आप करंट संचालित कर देते हैं तो उसमें जीवन का संचार हो जाता है और वो मूव करने लगती है, इधर से उधर जाने लगती है। और सोचिए कि अब तो वो लोहे का ढांचा ही है, और उस लोहे के ढांचे को विदा करते समय किस तरह का भावुक माहौल हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बहुत ही अपने क्लोज को विदा कर रहे हैं। तो इस तरह की विदाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रतीक है, प्रमाण है कि हमारे अंदर वो मनुष्यत्व जीवित है कि मतलब निकल गया तो हमें पहचानते नहीं, इससे हम बचे हुए हैं। विराट को विदाई दी गई। आपने न्यूज में ये भी सुना कि ये ब्रिटेन के रॉयल नेवी में भी ये शामिल रहा है और इसने सबसे लंबी सेवा की है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है जो इतने लंबे समय तक जिसने अपनी सेवाएं दी हैं। ये एक खबर थी फ्रेंड्स। दूसरी जो खबर थी वो यूपी और मणिपुर के चुनाव के जो आखिरी चरण में अब जो मतदान होने हैं, इस पर खबर थी, संक्षिप्त खबर थी, वो कोई खास बात नहीं है। हाँ, अब जिस दिन मतदान की गणना होगी 11 मार्च का जो दिन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें यूपी शामिल है जहां 420 विधानसभा सीट्स के लिए चुनाव हो रहे हैं। लंबे समय से वहां आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकार चली आ रही है, कांग्रेस लगभग वहां तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, अब तो और भी ज्यादा पीछे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़त हासिल की, सोचिए कि 80 लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 73 सीटें अगर हासिल कर ली, 72-73, तो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं वो एक तरीके से पूरे देश के चुनाव के एक तरह से ट्रेंड सेटर होते हैं। इसके माध्यम से हम चुनाव का जो फैब्रिकेशन होता है, जो बुनावट होती है, उसके बारे में कई निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और चूंकि राज्यसभा में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसका वह भी बहुमत में नहीं है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली तो राज्यसभा में इनकी स्थिति काफी बेहतर इस पार्टी की हो जाएगी, तो इसका प्रभाव पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर के चुनावों पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, तो 11 मार्च को इस पर हम लोग बातें करेंगे। एक और जो खबर थी फ्रेंड्स, वो कि जो हम पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, कल डीडी न्यूज पर भी ये खबर थी कि उन्होंने कहा है कि जो मुंबई में हमला हुआ है वो बेसिकली आतंकवादी संगठनों द्वारा किया गया, एक बनाई गई एक योजना का हिस्सा था, यानी कि भारत जो लगातार कहता रहा है कि ये प्रायोजित एक तरह से अटैक था, पाकिस्तान में इसकी साजिश रची गई थी, लेकिन पाकिस्तान लगातार नकारता रहा है, तो अब चूंकि उनके सुरक्षा सलाहकार, जो पूर्व सुरक्षा सलाहकार हैं, इस बात को रख रहे हैं, तो अब उनके पास इनकार करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान पर लगातार अब आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और खासकर जब से ट्रंप आए हैं तो इस मामले में तो आपको एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही होगी कि ट्रंप ने किस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ एक दृढ़ पर एक बयान दिया है, कह लीजिए कि नहीं इसको खत्म ही किया जाना है। यह बात अलग है कि अब उसको किस तरह से खत्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने 7 मुस्लिम देशों पर के नागरिकों के प्रवेश पर, अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका कि बहुत विरोध हुआ। उसमें से अब उन्होंने इराक का नाम वापस भी ले लिया है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो जरूर है कि चूंकि पूरी दुनिया अब आतंकवादी गतिविधियों से आजी जा चुकी है, तो मतलब बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, तो कुछ न कुछ तो अब इनके खिलाफ सामूहिक रूप से होगा ही। इस बीच में आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि सीरिया का जो मोसुल शहर है उसको ISIS के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो धीरे धीरे ये लग रहा है कि जो आतंकवादियों के जो हौसले हैं वो कहीं न कहीं पस्त पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एक साथ खड़ी हो रही है, और इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा श्रेय है कि वह दुनिया में लगातार आतंकवादियों के खिलाफ बोलता रहा है, एकजुट होने का आह्वान करता रहा है, और धीरे धीरे वो चीज अब दिखाई देने लगी है। और आतंकवाद इतनी बड़ी समस्या है जो आपके सिलेबस में भी है, तो इस पर आपको बकायदे अपनी नजर रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, न्यूज में तो बस इतनी ही बातें थी। अब मैं आता हूं आज के न्यूज पेपर्स के ऊपर। मित्रों, इस बीच में मैं लगातार न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड करता रहा हूं, और एक अच्छी बात यह है कि न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के साथ साथ आपको करंट कंटेंट भी लगातार मिलते रहे हैं। तो कम से कम आपका जो सिलसिला है न्यूज़पेपर्स के साथ, आप सब अपने अपने न्यूज़पेपर्स तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जो नौ न्यूज़पेपर्स जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उनके बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लिपिंग्स हैं वो आपको जो मिलनी चाहिए वो कम से कम मिलती रही है। ये बात मैं खासकर इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि जब आप देखिए कि मुझसे तो अब 20 दिन के गैप के बाद आपसे बातचीत हो रही है मेरी, लेकिन अब न्यूज़पेपर्स में जो चीजें चल रही थी, न्यूज में जो चीजें चल रही थी, वो मैं अब बताने की स्थिति में नहीं हूं। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि आप लगातार उनसे जुड़े रहे हैं और वो क्रम आपको मालूम है। होता यह है कि अगर वो क्रम बाधित हो जाता है तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है कि आप कैसे पीछे से जाकर के चीजों को समझेंगे। जैसे मैंने अभी मोसुल शहर के बारे में ही बताया कि वो ISIS के बंधन से मुक्त हो गया है, तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि वो बैकग्राउंड आपके पास है, पिछले 20 दिनों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनकी जानकारी आपको है, इसीलिए मैं उनको लेकर अभी नहीं चलूंगा। हां, यदि कोई ऐसी बात आई जिसमें मुझे लगे कि उसकी चर्चा पीछे से की जानी चाहिए तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उसे मैं पीछे से लेकर चलूं। फ्रेंड्स, एक क्लिपिंग्स मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का प्रोवाइड कर रहा हूं रोबोट कर के बारे में। पहले, ज्यादा पहले तो नहीं, 15-20 दिन पहले की ही बात होगी, इसी बीच की बात है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, संस्थापक बिल गेट्स, उन्होंने एक आइडिया दिया था और ये कहा था कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से रोबोट का उपयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोग अपने यहां से मनुष्य को नौकरी पर निकालते चले जा रहे हैं और रोबोट को नौकरी देते चले जा रहे हैं, तो एक बेरोजगार की भयानक समस्या धीरे धीरे शुरू हो, अभी तो शुरू ही हुई है, लेकिन अब लोग प्रेडिक्ट करने लगे हैं कि यह बहुत ही भयानक रूप लेगी। और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि UBI की बात होने लगी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात होने लगी है, और बहुत जोश खरोश के साथ बात होने लगी है। और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। अभी हमको ये भले ही थोड़ा सा छोटा रूप है, चूंकि इसका तो समझ नहीं पा रहे हैं, सामान्य बात दिखाई दे रही है, लेकिन आगे चल करके ये बहुत बड़े संकट के रूप में हमारे सामने आने वाला है। इसको देखते हुए बिल गेट्स ने एक सजेशन दिया था कि रोबोट पर कर लगाया जाए, यानी कि जो लोग रोबोट का यूज कर रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, और उस टैक्स का इस्तेमाल फिर UBI के लिए किया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने जो बात कही थी, और इस एडिटोरियल कमेंट में एक उन्होंने रिव्यू किया भी है, यह अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, आप लोग प्लीज इसे देखिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स लगाए जाने से जो रोबोट काम कर रहा है वो काम महंगा पड़ रहा है, तो हो सकता है कि फिर लोग रोबोट की जगह फिर आदमियों को ही काम देना शुरू कर दें। ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, मतलब एक यूं कह लीजिए कि इसमें एक दूर की दृष्टि दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें अव्यावहारिकता जो लग रही है वो ये कि क्या सच में आदमी रोबोट को रिप्लेस कर सकेगा, या इतना हाई टैक्स, इतने ऊंचे कर की दर रोबोट पर लगाई जा सकेगी कि वो व्यक्ति के द्वारा किए गए काम से ज्यादा महंगा पड़ सके। तो ये एक कुछ व्यावहारिक प्रश्न है और उसमें तीन इस तरह के सवाल इस बिजनेस स्टैंडर्ड में उठाए गए हैं, ये आप जरूर देखिएगा। और इसी से ही संबंधित, बिल्कुल तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट में जो आर्टिकल है ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड का है। इसमें इन्होंने जो यूबीआई जो है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसकी रियलिटी क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उससे और क्या चीजें आगे बढ़ेंगी, उसको लेकर के उस उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। और मित्रों, मुझे लगता है कि जो यूबीआई का जो मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको पहले भी आर्टिकल्स कुछ मैंने उपलब्ध कराए हैं। इस पर मेरा एक इस बीच में जो 15 दिनों का जो एक डेली ऑडियो लेक्चर था उसमें भी मैंने अलग से लिया था, और ध्यान होगा कि आपको मैंने कुछ करंट कंटेंट भी प्रोवाइड किए हैं। तो ये टॉपिक आपके रजिस्टर में स्थायी रूप से आ जाना चाहिए और आप इसको लगातार अपडेट करते रहें। फ्रेंड्स, एक मैं आपको आर्टिकल दैनिक भास्कर का प्रोवाइड कर रहा हूं, जो खासकर अभी जो एक फिल्म लिपस्टिक अंडर माई बुरका को लेकर के बहस जो चल रही है कि इसको फिल्म प्रमाणन बोर्ड पारित नहीं कर रहा है, इसको लेकर के एक बहस है। इसे भी, इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़िएगा। और इस आर्टिकल में उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता और समस्याओं को लेकर के कुछ नई बातें कही हैं। एक दो बहुत अच्छे उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं, हिंदी में है, इसे आप देख लीजिएगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और यदि आप चाहें तो इसे आप इसका प्रिंट भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स से बस इतना ही। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, इस बीच में जबकि ये डेली ऑडियो उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा था, उस समय आप लोगों के लगातार ईमेल आते रहे हैं और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि चूंकि उस समय उनसे शामिल नहीं किया जा सकता था तो आपको ज्यादातर ईमेल के आंसर भी मिल रहे होंगे। जो भी आपकी समस्याएं थी, जो भी आपके प्रश्न थे, समस्याओं के समाधान सुझाए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। तो मित्रों, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मेल रह गए जो रह गए उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। तो अब मैं उन मित्रों के नाम ले रहा हूं। इनमें से कुछ दोस्त हैं आयुष मौर्य, शशि शेखर, जय प्रकाश कुमार, सरोज राय बागबहरा छत्तीसगढ़ से, कृष्णानंद कुशवाहा, रितेश नायक पिथौरा छत्तीसगढ़ से, राधा कृष्ण महेंद्रगढ़ हरियाणा से, पूजा वर्मा, बबलू कुशवाहा, विजयता सिंह, हनी सिंह, अरुण कुमार, अनीता गौर, धनंजय त्रिपाठी, निशांत बेज बरुआ असम से, विनोद यादव और तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।